दरवाजे पर भी ताला नहीं लगता था, वहां पर भी रस्सी बांधती। मेरे कपड़े काले न हो इसलिए उन्हें प्लास्टिक की थैली में बांधकर बक्से में रख देती। एक बार किसी यात्री का टिफिन बॉक्स बस में रह गया था गलती से, जल्दी से वह निकल गया था। मैं नामपट्ट बदलने हेतु रिक्त बस में चढ़ गया तो नजरें पड़ गई। वह नागी को मैंने बताया। नागी धीरे से अंदर जाकर डिब्बा ले आई। स्टैंड के पीछे हम दोनों गए, कील से उसका ताला तोड़ा, डिब्बा खुला, भीतर की चीजें देखकर मुंह में पानी भर आया। सवेरे हम दोनों ने पता नहीं किसका मुंह देखा था। दादा बस अड्डे पर तो हमाली करते ही थे, अलावा इसके अगर कहीं बाहर गांव में हमाली का काम मिलता तो चले जाते, भूखे पेट सिर पर बोझ लिए मीलों चलते जाते। हमाली के पैसे लाकर संता माई को देते, तब संता माई अनाज ले आती, मैं दाल तेल ले आता। संता माई सवेरे सवेरे ही स्टैंड पर झाड़ू लगाती, कैंटीन वाला उन्हें चाय देता, उसमें से वह आधी चाय मुझे देती। दादा सवेरे बस में झाड़ू लगाते, पानी डालते, पर्दे बांध देते, नाम पट्ट बदलते। सवेरे की चाय के लिए वह पहले से पैसे बचा कर रखते, उन पैसों से चाय पीते। अगर पैसे न हो तो उस दिन हमाली मिलने तक सूखे मुंह चुपचाप बैठे रहते। कई बार एक कप चाय के लिए वह कैंटीन में पानी भरते, होटल वाले के कई काम करते, होटल वाला चाय उधार देता, हमाली मिली की वसूल करता अथवा पानी भरवा लेता। सवेरे की दूसरी गाड़ी से दैनिक पत्र का पार्सल जाता, कभी मैं दैनिक पत्र बांटता, कभी संता माय तो कभी दादा। गांव के माणिक सेठ के दूध का केन इस गाड़ी में रखना पड़ता था। गांव के जो संपन्न लड़के अक्कलकूट में पढ़ाई के लिए जाते, उनके टिफिन बॉक्स भी इसी गाड़ी में रखने पड़ते। ये सब काम हम तीनों करते, माणिक सेठ कभी कभार अड़चन में सहायता करता। बुहरानपुर के टीले से बस धूल उड़ाती हुई आती, वहां बस दिखी कि मुझे बहुत खुशी होती, भरपूर हमाली मिलेगी ऐसा विश्वास पैदा होता। हमाली मिले इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता। बस नजदीक आ जाती, नजदीक आ जाने के बाद जब यह मालूम हो जाता कि बस के ऊपर सामान नहीं है तो मैं उदास हो जाता, पर बावजूद इसके मेरी प्रार्थनाएं जारी रहती। चाय के पैसे तो मिलेंगे ऐसी झूठी आशा मैं करता। घर पर एक अतिथि आए थे, झोपड़ी में चाय की चीजें नहीं थी और उन्हें चाय पिलाने के लिए पैसे भी नहीं थे। उधार मंगवाने की इच्छा थी पर काशीनाथ नहीं था, बूढ़ा धनप्पा उधार देता नहीं था। बड़ी मुश्किल थी, क्या करें, दादा बस की प्रतीक्षा में थे। संता माय का चेहरा उत्खनन में प्राप्त किसी मूर्ति की तरह स्याह दिखाई दे रहा था। अतिथि विस्थापितों की तरह चुपचाप बैठा था। ड्राइवर उतर गया, दादा ने बस का दरवाजा खोला, कंडक्टर भी उतरा। उन दिनों ड्राइवर कंडक्टर मुझे बहुत बड़े व्यक्ति लगते। कंडक्टर व ड्राइवर बड़ी आत्मीयता से व्यवहार करते, संता माय को बुढ़िया कहते, पान तम्बाकू देते। स्टैंड पर मुकाम की आखिरी बस पहुंचने के बाद ही दादा खाना खाते, उस बस की प्रतीक्षा करते रहते। सबसे पहले कंडक्टर उतरता, बाद में धीरे धीरे एक एक यात्री। दादा हमाली है क्या की आवाज लगाते, बस में कोई बड़ी गठरी हो तो उतार लेते, लोग उतारने नहीं देते, हम खुद उतार लेंगे कहते, बकझक होती। लोग भी गरीब ही थे, ड्राइवर कंडक्टर पीने वाले हों तो दादा को अंडे और शराब लाने के लिए कहते, दादा को भी थोड़ी सी देते। आशा बड़ी बुरी चीज होती है, खाने पीने को मिलेगा, इस आशा से दादा मुकाम की गाड़ी की प्रतीक्षा करता। उस दिन बस से गुड़ के ढेले आ गए, अतिथि का आना शुभ शकुन था, अब हमाले मिलने वाले थे। जगन्नाथ पटेल की गुड़ की ढेलियां दादा ने उतार ली, उसकी परचून की दुकान थी। गुड़ की ढेलियां उतारने के बाद दादा ने मुझसे धीरे से कहा, ऊपर गुड़ है, जा। मैं ऊपर चढ़ा, बस की छत पर जहां गुड़ की ढेलियां रखी गई थी वहां काफी गुड़ चिपक गया था, गर्मी के कारण पिघल गया था। मैं एक डंडा लिए कुरेद कुरेद कर गुड़ इकट्ठा करता रहा। काफी गुड़ इकट्ठा हुआ, 4 दिन आराम से चाय बन सकती थी। गुड़ तो मिल गया पर चाय पत्ती कहाँ थी? एक और दिक्कत आ गई। स्टैंड के पीछे धनप्पा चाय बनवाकर पत्ती फेंका फेंक देता था। मैंने उसे खोज निकाला, पत्ती इकट्ठी कर लाया, काली चाय बनी। दूध तो था नहीं, थाली भर डिकॉशन पी ली, अच्छा लगा। चार पांच दिन लगातार स्कूल जाने के बाद शिक्षक ने तय किया कि हाजिरी रजिस्टर में नाम लिखा जाए। मुझसे पिता का नाम पूछा गया, पर मुझे पिता का नाम मालूम नहीं था। मेरे पिता भी हो सकते हैं, यह कल्पना बड़ी विचित्र लगी। मैं स्कूल जाने लगा। भोसले गुरुजी मुझे बासल गांव का पटेल कहते। पटेल संबोधन सुनकर मुझे ठीक भी लगता और गलत भी। स्कूल में मेरे नाम के आगे हणमंता लिम्बाले का नाम लगाया गया। कहीं से हणमंता को इसका पता चल गया। चार पांच लोग लिए वह तुरंत हन्नूर आया। गांव के दोस्तों और बिरादरी के लोगों को साथ लिए वह हेडमास्टर से मिला। उन दिनों भोसले गुरुजी हेडमास्टर थे। शिक्षकों का वेतन 70 रुपये था। हाथ में 100 का नोट लेकर हणमंता भोसले गुरुजी के पास गया। बंदूक का डर भी वह दिखा रहा था, पर भोसले गुरुजी जबरदस्त व्यक्ति थे, निर्भीक। उन्होंने दृढ़ शब्दों में कहा, इस लड़के का बाप कौन है यह इसकी माँ बतलाएगी, और इसके द्वारा बतलाया गया नाम ही मैं हाजिरी रजिस्टर में लिखूंगा। झगड़ा हुआ। हणमंता ने बहुत कोशिश की, गिड़गिड़ाने लगा, पर कुछ नहीं हो सका। भोसले गुरुजी के कारण मुझे पिता का नाम मिल गया। मसा माँ हमेशा कहती कि काका की बहुत बड़ी कोठी है, काले पत्थरों की। मैं जब जब गांव के भीतर जाता तब तब इस कोठी को ढूंढता। काले पत्थरों की कौन सी कोठी है? काका वहां कहाँ रहते हैं? पर काका की कोठी कभी मुझे मिलती ही नहीं। माँ कहती, काका का लड़का है, पत्नी है, माँ बाप हैं। यह सुनते हुए मैं बेचैन हो जाता। काका का दूसरा घर है, पत्नी और बच्चे हैं, तो काका हमारे घर पर क्यों आते हैं? मैं तो समझ रहा था कि काका और माँ पति पत्नी हैं। यह सब अजीब सा रहस्य लगता। काका हमारे घर छिप कर आते, बैठते, बोलते, हंसते, घर के सदस्य की तरह व्यवहार करते। काका हमें पिता की तरह लगते। मैं गांव के भीतर जाता तो काका की कोठी ढूंढता। काका की पत्नी गोरी होगी क्या? काका का लड़का कैसा हो गया? उनके माता पिता कैसे होंगे? हमेशा यही विचार आते। माँ द्वारा बतलाए गए चिन्हों को मैं ढूंढता। एक बार गांव में मुझे काका दिखाई दिए। काका की कोठी मिली। लगा काका मुझे देख लें, घर ले जाएं, खाना खिलाएं। उनके घर के निकट जानबूझकर रेंगता रहा। उन्होंने मुझे देखा, मुझे लगा अब वे मुझे बुलाएंगे, पर काका ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया और मैं उदास होकर चुपचाप निकला। हमारे घर आने के बाद काका बाप की तरह अधिकार जतलाते, पर अब अजनबी क्यों बन गए? क्यों नहीं उन्होंने मुझे भीतर बुलाया? काका अब मुझे बाप की तरह नहीं लग रहे थे। मुझे उन पर गुस्सा आने लगा। इच्छा होती कि काका की मां पर बलात्कार करूं। दरवाजे के छेद से कभी देखा हुआ काका माँ का संभोग याद आने लगा, और याद आने लगी तारा माए, काका की माँ, बुढ़िया। वह हमें ऊपर से पानी देती अछूत की तरह। मैं नीचे बैठकर अंजुली से पानी पीता। काका के घर का पानी पी रहा हूं, इसी का एहसास मिलता। प्रतिवर्ष गांव में कॉलरा नाम की बीमारी फैलती। हम उसे मरी आई की बीमारी कहते। कॉलरा में काफी लोग मरते। मरी आई की अवकृपा जिस पर होती उसके क्रियाकर्म की तैयारी करनी पड़ती। कायर करके मरी आई को शांत करना पड़ता। मरी आई कि शांति के लिए बैल काटा जाता, पोतराज नाचता, शाम को मरी आई का रथ खींचा जाता। मरी आई को गांव के बाहर ले जाकर छोड़ते, काका जिनठिग्या से मुनादी करने के लिए कहते। जिनठिग्या गांव में मुनादी करते हुए घूमता, मुनादी की आवाज आई कि माँ हमें खामोश रहने के लिए कहती। जिनठिग्या की मुनादी को ध्यान से सुनती, कभी यह मुनादी की जाती कि अब यह गांव कर्नाटक में जाएगा, तो कभी यह सुनने में आता कि कुरनूर नदी पर नहर बांधा जाने वाला है, हमारा गांव महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर है। विवादग्रस्त सीमा विवाद कभी मिटा नहीं, पर हमारे गांव में अक्सर इस बात को लेकर चर्चाएं होती रहती। कुरनूर नहर का भी यही हाल था, जल्दी ही कुरनूर नहर बनेगी ऐसा कई वर्षों से कहा जा रहा था, पर हर बार वह अफवाह ही साबित होती। नहर बन रही है, ऐसी मुनादी हुई कि लोग जमकर चर्चाएं करते। प्रीत यात्रा के समय डफली बजाने वाले जेठिंग्या, दंगल में डफली बजाने वाले जेठिंग्या, जेठिंग्या कभी स्पष्ट तथा लगातार बोलता नहीं था, बोलती थी उसकी डफली। जेठिंग्या अपने घर के सामने आग तैयार करता, डफली को तपाता। जब हम लोग लेझिम खेलते और जेठिंग्या डफली बजाता, तब डफली आदमी की तरह बातचीत करती। गांव में कॉलरा शुरू हुआ कि डॉक्टर टीका लगाने आते, पहले स्कूल के बच्चों को टीका लगाते। मैं घबराता, रोता, बोम्ब मारता, भाग जाता। घर में भी वही स्थिति, संता माय मुझे तथा सभी बहनों के लिए जंगल में निकल जाती को लिए संता माय मुझे सभी बहनों को लिए जंगल में निकल जाती। माँ दरवाजा बंद करके बैठती। बीमारी जब बहुत बढ़ जाती है, तब संता माँ चूल्हे की राख लेती, दीवार से मिट्टी निकालती और हमारे माथे पर मलती, माथे पर लगाती। माँ मेरे बच्चों को ठीक कर, कहती। बीमारी न हटती तो कहती, भूत बाधा हुई है, किसी ओझा से पूछताछ कराती। ओझा की पत्नी कुछ उतार कर फेंकने के लिए कहती। हमारे पड़ोस में ही मारुति का घर था। मारुति का बाप लखू जानकार आदमी था। भानामती उसे आती थी, मंत्रित राख देता, ताबीज बनवा कर देता। अड़ोस पड़ोस के गांव में वह हमेशा घूमता, अपने बक्से से इंद्रजाल निकालता। मैं, इल्या, मारत्या, मोहिनी मंत्र सीखते। स्कूल की लड़कियां आकर्षित हों इसलिए साधना करते। इल्या बड़ा चालू था, वह अनेक करामाते करता। इसी आयु में काका मुझे महाभारत, रामायण, हरिविजय, पांडव प्रताप, शिवलीलामृत, काशीखंड, मार्तंड पुराण, नवनाथ कथा सागर, तोता मैना, वेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी जैसी पुस्तकें पढ़ने के लिए ला देते। गीता रोज पढ़ता, इंद्रजाल करता। इल्या कोक शास्त्र ले आया था। यह सब 5वीं 6ठी कक्षा में चलता था। उन दिनों दलितों की बस्ती पर पत्थर चलते। एक बार एक पत्थर मेरी बहन नागी की कमर पर आ लगा। घर में बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कोई कहता, भानामती की हो गई है, पत्थर आ रहे हैं। संता माए गालियां बकती। गालियां देने से भानामती का असर अधिक होता है, ऐसा कहा जाता। पत्थर मारने वाला कभी मिलता ही नहीं था। ऐसे समय लखू की याद आती थी। वह होता तो शायद भानामती के इन पत्थरों को रोक सकता था। लखू बड़ा विचित्र व्यक्ति था। खाने बैठता तो अकेला ही। मटन का खाना होता तो पहले थाली भर रोटियों का चूरा बनाता, साथ कोई न कोई बैठे इसलिए थाली में थूकता, माफ कीजिएगा, साथ कोई न बैठे इसलिए थाली में थूकता, तब वह आराम से खाता। मारुति के घर के सामने कोंडा माय का घर था। कोंडा माय भरे पूरे बदन की जवान स्त्री थी। उसका पति केरू कुरूप काला, दोनों में बनती नहीं थी, जोड़ी ठीक नहीं थी। हमसे कहा जाता कि केरू की अतड़ियां उल्टी हैं और जिनकी अतड़ियां उल्टी होती हैं उनके मुंह से शौच की दुर्गंध आती है। आधी रात हुई कि कोंडा माय का चिल्लाना शुरू हो जाता, उसके रोने से मैं बेचैन हो जाता। बस्ती की नींद टूटती, केरू कोंडा माय को काफी तकलीफ देता। दिन में कोंडा माय मसा माँ के यहाँ आते थे, मसा माँ उसे समझाती, उसकी गोरी पीठ पर मार के निशान दिखते। माँ उन निशानों पर हाथ फेरती, कोंडा माय सुबकती जाती। कोंडा माय दगडू अन्ना के साथ जाती, पता नहीं उन दोनों में क्या हुआ कि बात बिगड़ गई। उसने दगडू अन्ना को छोड़ दिया तथा केशव के साथ रहने लगी। दगडू चिढ़ गया, वह रोज गोफन से कोंडा माय के घर पत्थर मारता। पत्थर कभी हमारे घर, कभी मारुति के घर में, तो कभी कोंडा माय के घर के पास बरसते, हो हल्ला मचता। हमारे घर अम्बू बाई आती, उसका तथा कचरू नाना का प्रेम था। दोनों के बाल पके हुए थे। बूढ़े बुढ़िया का यह लफड़ा जाति पंचायत के सामने आया। बुढ़िया गर्भवती हो गई थी। पंचों ने अम्बू माय को कचरू के घर में घुसा दिया। पता चला कि कचरू नाना रोज रात घर के पिछवाड़े पेशाब करने के बहाने निकलता और अम्बू माई के साथ सोकर आता। कचरू नाना की पत्नी गुजर चुकी थी। लोगों ने कचरू नाना की फजीहत की, उस पर दंड लगाया गया। बस्ती को मीठा भोजन देने का आदेश हुआ, पर कचरू ने सुना नहीं। बस्ती ने उसे बहिष्कृत कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया गया और बातचीत भी। बाद में अम्बू माँ की असलियत का पता चला, वह गर्भवती नहीं थी, अफवाहें उड़ाई गई थी। कचरू नाना ने उसे घर से निकाल दिया और उसी रात बेटी की उम्र की एक जवान लड़की से उसने ब्याह किया और बस्ती में पत्नी ले आया। उस दिन सवेरे सवेरे हम लोग अरली पहुंचे। धूप बढ़ने के पूर्व हमें पहुंचना था। हम दोनों ने माल भर लिया, हमें पीने के लिए सैंपल दिया गया। मैंने और मारुति ने पी ली, चिवड़ा लेकर खाए। मारुति और मैं अरली के बाहर निकल गए। शराब किसी को भाती नहीं है, किसी को सॉरी रिपीट, शराब किसी को भाती है किसी को नहीं। शराब पीने के बाद मैं लगातार बोलने लगता हूँ, कह होती है। थोड़ी ही शराब में बहुत नशा हो जाता है, बात जमती नहीं पर पीनी भी पड़ती है। मैं और मारुति अरली के खेत में पहुंचे। हम दोनों ऊसर धरती की तरह। मैं मारुति के पीछे पीछे निकला था, डगमगाते पैरों से। मुझ पर नशा छा रहा था। मारुति, तुम मेरे भाई हो, मन की बातें मैंने तुझसे ही कह दी हैं। मुझे नशा नहीं हुआ है भला? तू सोचेगा कि मैं नशे में बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं कल भी यही कहूंगा भला। मारुति मुझे आगे ले जाता, उस पर शराब का कोई असर नहीं होता। चलते समय भी मैं संतुलन नहीं रख पाता। गांव नजदीक आया कि नशे में भी अच्छा लगता। मारुति नदी के रास्ते बस्ती की ओर निकल जाता। मुल्ला गुरुजी अगर दिखे तो मैं पीछे घूम जाता। एक बार नशे में पत्थर फोड़ने वालों की रोटियों की गठरी मैं उठा चुका था। वे लोग बंगले के पास पत्थर फोड़ रहे थे। मैंने गठरी उठा ली और चल पड़ा। मीलों की रोटियां थीं। रोटी पर तले हुए चूहे रखे हुए थे। याद आया कि एक बार मैंने नीली की रोटियां भी चुराई थीं। तब अकाल का समय था। बड़बड़ा की रोटियां खाकर लोग दिन काट रहे थे। तरवट की हरी पत्ती खाते। हमारे घर में तो काम करने वाले कोई थे नहीं, इस कारण भूख से परेशान हो जाते। हौसामा नीली के लिए आधी रोटी रख कर जाती। भूख लगने के बाद नीली खा लेती। हम उसके चेहरे की ओर देखते। उस दिन नीली बाहर खेलने गई। मैं धीरे से उसके झोपड़े की ओर खिसका, भीतर गया, बक्सा खोला, बक्से में रोटी थी। पूरी रोटी लेकर भागने की इच्छा हुई, पर नीली का क्या होगा, थोड़ी सी खा लूंगा और थोड़ी सी रखूंगा, पर भूख काफी थी। मैं इस रोटी का टुकड़ा तोड़ता, खाता और फिर रख देता, फिर निकालता, सोचता अब यह आखिरी टुकड़ा। ऐसा करते करते पूरी रोटी खा गया। उस दिन नीली भूख से तड़प रही थी, उसकी रोती आंख आज भी मुझे याद आती है। रोटी आदमी जितनी, रोटी आकाश जितनी, रोटी सूर्य की तरह प्रखर, भूखे आदमी से बड़ी, भूख सप्त पाताल से भी गहरी। आदमी रोटी जितना, भूख आदमी जितनी, पेट आदमी से गहरा, एक पेट का अर्थ है एक पृथ्वी। पेट होता है इतना सा, पर पूरी दुनिया खाकर उसने डकार दी है। भूख ना होती तो क्यों होती लड़ाइयां, चोरियां, मारपीट? पेट ना होता तो क्या होते पाप पुण्य? क्यों देश, सीमा, नागरिक, संसद, संविधान आदि आदि? पेट से तो जन्म ले चुकी है दुनिया। दुनिया के ये संबंध, माँ बाप, भाई बहन इत्यादि इत्यादि। स्टैंड पर रात में सोने के बाद अगर वर्षा होती तो डर लगता। देहात का वह स्टैंड, बड़े आकार की खिड़कियां, सामने से पूर्णतः खुलती खुली, ऊपर सीमेंट की टिन। ठंड से परेशान हो जाते हम लोग, रात भर वर्षा होती, अचानक चमकने वाली बिजली से गांव चमकता क्षण भर। कभी किसी दीवार के गिरने की भयानक आवाज आती, गहरे अंधेरे में बरसने वाली वर्षा कितनी भयावह होती है इसका अंदाजा स्टैंड पर गिरने वाली बूंदों से आ जाता। नाले पानी से भरे रहते, नदी उफनती। सवेरे गांव नहाया हुआ लगता। बारिश के दिनों में मैं स्टैंड पर स्थित बेंचों के नीचे सोता। संता माँ किसी कोने में कंबल लिए कांपती बैठती, ठंड से परेशान होती। मसा माँ के बाद संता माँ एक बार गर्भवती हुई, पर कुछ नहीं हुआ, अकेली लड़की ही उसकी संपत्ति। दादा दूसरे छोर के कोने में बीड़ी सुलगाते, संता माँ बारिश को गालियां देती, दादा संता माए को गालियां देते। संता माए मंगल शुक्र को उपवास करती, मंगलवार अंबाबाई का और शुक्रवार लक्ष्मी का, दादा लगी नशा का गुरुवार करते। हर गुरुवार दादा नहाते, मुझे भी लगी नशा को ले जाते। संता माए मंगल शुक्र एक समय खाती, बहन पमी रोने लगी कि संता माए अपना स्तन उसके मुंह में रख देती। बिना दूध का स्तन पमी चूसती जाती, उसका रोना रुक जाता। संता माए माथे पर बहुत बड़े आकार का कुमकुम लगाती, गले में कौड़ियों की माला डाल लेती। घर की देहरी में अंबा माए की परड़ी, होती। देहरी के पास स्थित खूंटे पर मशाल होती। संता माए परड़ी के निकट लोबान का धुआं बनाती, मशाल जलाती, हाथ जोड़ती, कहती सदानंदी उंद उंद, आए रजा उंद उंद। परड़ी लिए बाहर निकलती, अपने ही घर पर पहला जोगवा मांगती, मैं उसे जोगवा देता। फिर हौसा माए के घर के सामने जाते, सुर में चिल्लाती अम्बाबाई लक्ष्मी का जोगबा। कोई आटा डालता, कोई रोटी के टुकड़े, आटे नमक से परड़ी भरी रहती। तेल की कटोरी में कोई 5-10 पैसे डालता। जब वह घर लौटती, मैं उनके पैर छूता, वह मुझे भस्म लगाती। परड़ी मसा माँ को दे देती, वह थकी मांदी लौटती। मैं लोटा भरकर पानी देता, वह पानी पीती। छलनी लेकर वह नमक आटा अलग करती। मसा माँ दूध पीते बच्चे को अलग रख रोटी के टुकड़े लेती। टुकड़े हम सब में बांटे जाते। गरम रोटी का टुकड़ा होता तो मैं मसा माँ को दे देता। उतने भर से उसकी छाती में दूध भर आएगा इसी आशा से। गेहूं की रोटी का टुकड़ा होता तो सब में थोड़ा थोड़ा बांटता बांटता मिठाई की तरह। दशहरे को लोग परड़िया भरते, मनोतियां पूरी होती, देवी अम्बा की मूर्ति के सामने मुर्गी काटते, संता माँ नवरात्र में 9 दिन उपवास करती, दशहरे के रोज दिन भर गांव में घूमती, मातंग की परड़ी को अधिक महत्व दिया जाता था, पुतला माँ अथवा जेठिंगिया भी परड़ी लिए गांव में घूमते, बहन निर्मी भी परड़ी लिए निकलती, जोगवा से मिला अन्न सुखाकर 8-8 दिन खाते, 5 परड़ियां गांव में घूमती, प्रत्येक ने एक एक गली चुन लेते, आखिर में 5ों परड़ियां इकट्ठी की जाती, इकट्ठी वस्तुओं को 5ों में समान रूप से बांटा जाता। जोगुआ में कोई अच्छी ताज़ा जायकेदार वस्तु डाली जाती तो निर्मी चुपके से खा लेती। अन्य औरतें किसी भी चीज़ को अकेले में कभी न खाती। एक बार निर्मी को जोगुआ खाते हुए इनमें से किसी एक ने देख लिया, फिर क्या, चारों ले मिलकर उसको खूब डांटा, काफी डांटा, कहती रही कि अब तुम्हें अपने साथ नहीं लेंगे। हया बहुत काला व्यक्ति था, वह गांव की शोभी पर मरता था। शोभी सवर्ण की लड़की, गोरी, सारा गांव हमें दलित के रूप में जानता था। संता माए सड़कों पर झाड़ू लगाती, जोगवा मांगती, औरतों की मालिश करती, जच्चगी करती, तो दादा गांव की दिया बत्ती करते, हमाली करते, पेपर बांटते, स्कूल के बच्चे के टिफिन बस में रखते, शराब पीकर कहीं पर भी पड़े रहते, सब उन्हें जानते थे। इल्लिया हया को देख शरारत करता, देख हरी का रंग राधा हो गई दंग, हया चिढ़ता। एक बार गांव में किसी का बछड़ा मर गया, हया उसे उठाने गया। उस वर्ष हया के परिवार को पड़ का हक मिला था। हया कंधे पर बछड़ा लेकर निकलता, रास्ते में शोभी गुजर रही थी, उसे देख हया बहुत शर्मा गया। शोभी ने नाक पर रुमाल रख लिया, हया चिढ़ गया अपने आप पर, कंधे पर लटके बछड़े को रास्ते में ही फेंक कर उन्नत मस्तक से निकल जाने की उसकी इच्छा हुई। उसे लगा यह भी कोई जिंदगी है, मृत जानवरों को उठाओ, उसे काटो, खाओ, छी। हया को पहली बार अपने अस्तित्व का एहसास हुआ, ऐसे गंदे कामों के प्रति पहली बार उसे तिरस्कार महसूस हुआ। मुझे डफली के लिए चमड़े की जरूरत थी, मृत पशु का चमड़ा उधेड़ते समय हया बिना वजह चिढ़ रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वह मौन था, गंभीर था, मृत पशु की आंखों की तरह उसकी आंखें दिख रही थी। हया चमड़ा लेकर निकल गया, हम मृत जानवर के मांस के टुकड़े इकट्ठे कर रहे थे, कुत्तों की भीड़ बढ़ रही थी, गंगा माँ को कलेजा निकाल कर दिया गया। उसी समय काशीबाई बर्तन ले आई, कहने लगी, शरणु जीभ निकाल कर दे दे, तेरे नाना की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार आदमी के लिए जीभ का हिस्सा जरूरी होता है। मैं चौपाल पर बैठ गया, हया ने वहां चमड़ा रखा था सुखाने के लिए, जैसे गीला कंबल बिछाया गया हो। गिद्ध और चीले चमड़े पर चोंच न मारे इसलिए ऊपर मिट्टी फैलाई गई थी, उसे कुत्ते न उठा ले इसलिए हया पास ही बैठा था निगरानी करते हुए। शोभी अपनी अपने खेत को निकलती थी, उसका रास्ता उस बस्ती के चौपाल से जाता था। जैसे ही मैंने हया को इशारा किया कि हया चमड़ा उधेड़े हुए पशु की तरह दिख रहा था, हया हंसा भी नहीं। बाद में कई दिनों तक जब भी शोभी इस रास्ते से गुजरती तो हया गर्दन नीचे झुकाए बैठा रहता। शोभी के विवाह के समय मड़वे के नीचे झाड़ू लगाते हुए मैंने हया को देखा है। शोभी की शादी में बारात के समय साथ साथ सिर पर गैस बत्ती लेकर जाते हुए मैंने हया को देखा है। शोभी पति के साथ जब ससुराल गई तब मैंने हया को गर्भवती कुत्ती की तरह स्टैंड पर जगह ढूंढते हुए देखा है। मधुमक्खियों के छत को अगर कोई पत्थर मार दे तो छत्ता नष्ट कर दे तो मधुमक्खियां जैसे भिनभिनाने लगती हैं और किसी अन्य पेड़ की तलाश में निकल जाती हैं, वैसे ही मैंने हया को उस दिन घर की ओर जाते हुए देखा है। पहली बार ससुराल जाने वाली नाजुक लड़कियों को इस स्टैंड पर मैंने देखा है। गर्भवती होकर मायके लौटते हुए उन्हें इसी स्टैंड पर मैंने देखा है। शेवंता इसी स्टैंड पर आई थी। शेवंता सबसे गले लगकर रो रही थी। जो हम दोनों भी चाह रहे थे कि बाहों में बाहें डालकर खूब रो लें। सोच रहा था कि शेवंता का पति मर जाए और मैं उसे अपनी पत्नी बना लूं। शेवंता पागल पालागन कर रही थी। यूं मैं रोज बस की प्रतीक्षा करता रहता, पर उस दिन पहली बार सोच रहा था कि बस ना आए। शेवंता यहीं रुके, पर बस आई। शेवंता गई। परछाइयां सूर्य की विपरीत दिशा में झुकी थी। शेवंता कहती, तेरे नाम के कारण बदनाम हो गई हूं। अब या तो तुम्हारे घर में घुसकर नाम कमाऊंगी या कुएं में गिरकर। शेवंता निर्जीव बस की तरह चली गई। मैं बस स्टैंड के पास यूं ही खड़ा रहा। जिंदगी के इस रास्ते पर जिंदगी ही हमाल की तरह लगती। अब रोज एक दिन रिक्त बस की तरह कोचता। किसी के लिए जीना यह भाव ही जिंदगी की को जीवंतता प्रदान करता है। उस दिन काका के घर जाना था। काका के पिता बीमार थे। मसा माँ ने सवेरे ही नहा लिया, नागी के बाल ठीक ठाक कर दिए, मुझे भी सजाया गया। काका के घर जाना है, इस कल्पना से ही हम बहुत सब खुश हो गए। काका के माँ बाप तथा पत्नी देखने के लिए हम उत्सुक थे। काका के घर हम अतिथि बनकर जाएंगे, इसलिए बहुत हर्ष हो रहा था। माँ तो जैसे ससुराल जा रही थी सज धज कर। एक चारपाई पर काका के पिता सिद्रा माप्पा सोए हुए थे। उन्हें कौन सी बीमारी थी पता नहीं। मसा माँ ने सिद्रा माप्पा के पैर छुए, बहू की तरह। बूढ़ा खांस रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। मैं, माँ, नागे चारपाई से दूर थे। घर में तारा माँ बीड़ी पीती बैठी दिखी। कल्लूणन्ना खाना खा रहे थे। बड़ी माँ काशीबाई हम सबको घूर घूर कर देख रही थी। काका घर में कहीं छिपे बैठे थे। काका की कोठी और हमारी झोपड़ी कोई तुलना। इतनी बड़ी कोठी में रहने वाले काका हमारी झोपड़ी में क्यों आते होंगे। माँ, नागी तथा हम सबको बेहतरीन कपड़े पहनने के लिए मिल जाए तो सचमुच माँ इस बड़ी माँ से अधिक खानदानी दिखेंगी। क्या कभी हम लोग ठीक ठाक पहन और खा सकेंगे। क्या कभी पेट भर मीठी चीजें खा सकेंगे। इस काले पत्थर की कोठी से हमारा कौन सा अनैतिक संबंध है। इस कोठी के दरवाजे से हमारा कहाँ संबंध है। इस पटेल की हम कौन सी संतान है। पटेल से जन्म लेकर भी इस कोठी में हमें क्यों नहीं रहने दिया जाता। ये खानदानी दीवारें क्यों नहीं स्वीकार करती मुझे। यह कोठी मौन क्यों है। यह गूंगी क्यों हो गई है। इसकी जीभ कहाँ लापता हो गई है। काका की पत्नी ने चाय दी। उसके माथे पर त्योरियां चढ़ी हुई थी। केवल गुस्से में दिख रही थी। केवल गुस्से से देख रही थी। लोहे के बर्तन में 3 कप चाय उड़ेली गई। मैं वह बड़ा बर्तन उठा नहीं पा रहा था। हाथ कांप रहे थे। उससे चाय पी नहीं पा रहा था, पर पी गया। माँ को पीतल के गिलास में चाय दी गई। नागी चाय के लिए रो रही थी, पर वह इतने बड़े बर्तन से चाय कैसे पी सकती थी। मसा माँ को काका के घर की चाय मिल गई। काका के घर प्रवेश मिला। काका के पिता के पैर वह छू सकी। काका की पत्नी ने खुद चाय बनवा कर दी। मसा माँ को ये सारी बातें कितनी महत्वपूर्ण लगती। बड़े अभिमान से वह यह सब पूरी बस्ती को कहती। मुझे अक्सर उनसे सुनी एक कहानी याद आती है। एक थी चमारिन। उसे जाना था बाजार। सज धज कर निकली, पर नारियल का तेल नहीं था बालों को सजाने के लिए। इसलिए उसने मृत पशु की चर्बी लगा गला कर लगवाई। चमारिन निकली बाजार में मांग भरकर, पर पशु की चर्बी लगाने के कारण सिर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। वह खरीद फरोख्त कर रही थी। सिर पर मक्खियां भिनभिनाने के कारण सारे लोग उसके सिर की ओर देख रहे थे। गांव के पटेल ने भी उसकी ओर गौर से देखा। चमारिन ने समझा, पटेल मेरी ओर देख रहे हैं, मेरी ओर आकृष्ट हुए हैं। वह भीतर ही भीतर बहुत खुश हो गई। रात में वह घर नहीं गई, पटेल के घर गई। पटेल की पत्नी ने जूठन परोसी। रात में पटेल की कोठी के सामने ही सोई, सोच रही थी कि पटेल रात में आएंगे उठाएंगे। वह सो गई। पटेल के कुत्ते को उसके सिर पर की चर्बी का गंध का एहसास हुआ। वह सूंघते हुए वहां आया, उसके बाल खींचने लगा। चमारिन को लगा कि पटेल ही आए हैं। नींद में खुश होकर वह कहने लगी, छोड़ो भी, जबरदस्ती क्या है, मैं तो आई हूं ही इसीलिए। अक्सर माँ मुझे या नागी को काका को बुला लाने के लिए भेज देती। हम डरते। काका 10-20 की बैठक में बैठते थे, उन्हें कैसे संदेशा दें। माँ कहती, धीरे से काका की चप्पल चुरा कर ले आओ। ठीक है, कहकर हम निकलते, पर हिम्मत नहीं होती। काका जब तक नहीं आते, माँ खाती नहीं थी, प्रतीक्षा करती रहती। काका 4-4 दिन नहीं आते, माँ छटपटाती, सोचती, यह भी मुझसे ऊब गए हैं क्या। काका दलित बस्ती में आने से घबराते, बस्ती के और लोग क्या कहेंगे इससे भय खाते। हमारे घर आते समय दो को साथ ले आते, अकेले आते तो बंदूक के साथ। काका आए कि माँ रूठ कर बैठ जाती। काका समझाते, मनाते, व्यस्तता के कारण आ न सका ऐसा कहते, अनेक कारण बतलाते। फिर दोनों हंसने लगते। काका हमारे घर में पूरी तरह रमते नहीं थे, माँ काका से डरती थी। एक के बाद एक 6 बेटियां हुई, लड़का नहीं, माँ को बेटा चाहिए था, और आखिर में लड़का हुआ। माँ ने झगड़ना शुरू कर दिया। काका बात को टालते। माँ कहती, तेरी मृत्यु के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे नाम पर कुछ लिख दे, 6-7 बच्चे जने हैं तेरे साथ मैंने। झगड़े के बाद से काका घर आते ही नहीं थे, जनी के घर जाकर रुकते। जनी काका की पहली रंडी, गोंधली जमात की। काका ने उसे शुद्ध कर लिया था, उसके गले में लिंग भी डाल दिया था, उसे गुरु भी डाल दिया था। वह लिंगायतों की तरह रहती, शिवाय नमः कहती। काका का आना जब बंद होता, तो माँ का गुस्सा और चढ़ता। वह चिढ़ती। एक बार माँ जनी के घर में घुसकर जनी को पीट चुकी थी, और एक बार तो वह बम्बई भी चल दी थी। कमलाक्का उन्हें बीच रास्ते से वापस ले आई थी। वह अगर गई होती तो आज हम माँ की भड़ुएगिरी करते शायद। अंततः काका ने माँ के नाम पर 2 एकड़ जमीन कर ही दी। संता माए जचगी करती। गांव की किसी स्त्री का पेट दर्द होने लगता तो उन्हें बुलाया जाता। संता माए जाती, कुछ अनाज मिल जाता। रात में किसी भी समय बस्ती पर लोग आते, आवाज देते। संता माए नींद से उठती, रात भर जच्चगी के लिए जागती। सवेरे मैं खुद को अनाथ महसूस करता। संता माए गर्भवती स्त्रियों के पेट पर तेल लगाकर मालिश करती। भीतर बच्चा सीधा नहीं होता तो उसे मालिश से सीधा करती। भीतर हाथ डालकर बच्चे का सिर पकड़ती, बच्चे को खींचकर बाहर निकालती। मैं देखने जाता तो यह पुरुष है कहकर मुझे भीतर छोड़ते नहीं थे। प्रसूति के बाद संता माँ का आंचल अनाज से भर जाता। चूड़ियों तथा ब्लाउज के लिए पैसे दिए जाते। इस काम से निपटकर जब संता माँ घर लौटती तो मैं उन्हें टोकरी देता। आंचल का अनाज वह उसमें डालती, न किसी को छूती न किसी को छूने देती। कंगन फोड़ डालती, मसा माँ पानी गर्म करती, फिर संता माँ सिर पर से नहाती। घर में जर्मन के दो कड़े थे, उन्हें हाथ में डाल देती। कंगन पहनती तो समझ लेते कि अब किसी की प्रसूति की बारी है, फिर कंगन फोड़ डालती। संता माया का पति जब गुजर गया तब मैं खाना बना रहा था, किसी ने खबर दी, संता माया जोर जोर से रोने लगी। संतति नहीं हो रही थी इसलिए पति ने उसे छोड़ दिया था और दूसरा विवाह कर लिया था। बच्चे हुए, संता माया झोपड़ी में रहने लगी। आज पति की मृत्यु की खबर सुनकर वह रोने लगी। इस बीच मसा माँ भी आई, दोनों और रोने लगी। नागी निर्मी भी रोने लगे। दादा हमाली कर रहे थे, वह भागते हुए आए। हमाली से इकट्ठे पैसे संता माँ को दे दिए। उसी बस से संता माँ पति की अंतिम क्रिया के लिए निकल गई। शाम को दादा चावल लेकर आए, हम दोनों ने पकाए खाए। उस दिन दादा ने शराब नहीं पी, मुझे निकट लेकर सो गए। मुझे जन्म देने वाले पिता की तरह मुझे दादा लगे, पर हम दोनों एक ही रक्त के लग रहे थे। दादा के प्यार में किसी भी धर्म की गंध नहीं आ रही थी। संता माँ पति की अंतिम क्रिया और अन्य सारे कर्मकांड करके लौटी। उस दिन जैसे ही वह बस से उतरी, दादा ने उन्हें चाय पिलाई। संता माँ अपने साथ वसु मामा को ले आई थी। वसु मामा संता माँ की सौत का लड़का, पारा में शिक्षक है, 2 दिन के लिए बुला लाई थी। वसु मामा को साथ ले जाने के कारण संता माँ ने दादा से कहा कि वह अगले 2 दिन घर न आए, दादा स्टैंड पर ही रहते। वसु मामा बाहर निकलते कि दादा धीरे से आते, खाना खाकर निकल जाते। एक दिन दादा की स्थिति रंगे हाथ पकड़े गए चोर की तरह हो गई। संता माँ आतंकित हो गई। वसु मामा ने पूछा, ये सज्जन कौन है? संता माँ ने कहा, हमारी पहचान के हैं, इनका कोई नहीं है, हमारे ही पास रहते हैं, हमाली करते हैं, परदेशी हैं। दादा अधपेटे ही वहां से खिसक गए। हमारे गांव में 7वीं कक्षा तक ही स्कूल था। 8वीं के लिए मैं चुंगी नामक गांव में जाने लगा। हाई स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई के लिए प्रार्थना पत्र देना पड़ता था। उसमें माँ अथवा पिता तथा सरपंच के हस्ताक्षर जरूरी होते थे। इसके पूर्व अभिभावक के स्थान पर अंगूठे का निशान मैं ही लगाता रहा, पर सरपंच के हस्ताक्षर की दिक्कत आती। अभिभावक की जगह मैंने मसा माँ का नाम लिख दिया, क्योंकि हणमंता से माँ का विधिवत विवाह नहीं हुआ था। हणमंता ने मसा माँ से संबंध तोड़ दिए थे। इसके पूर्व के पति ने मसा माँ से तलाक ले लिया था। हणमंता मसा माँ को अपनी रखैल बनाकर रख चुका था। गांव के जमींदार तथा पटेल दलित स्त्रियों को रखैल बनाकर रख लेते हैं। प्रत्येक गांव में ऐसा एक घर होता है। इन रखैलों से जन्मे बच्चे को हक का पिता नहीं मिलता। जमींदार को बाप कहने की हिम्मत उनमें नहीं होती, क्योंकि बाप बेटों में अनंत दरारें होती हैं। मसाई हणमंता लिम्बाले। अभिभावक के स्थान पर यह नाम लिखना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि हणमंता और माँ के विच्छेद को 8-10 वर्ष बीत चुके थे। अब मसा माँ किसी पटेल के यहाँ है। एक मालिक से दूसरे मालिक के पास रेहन में पड़े रहना, दूसरे से तीसरे की ओर उपभोग्य वस्तु की तरह पड़े रहना, यह कैसी जिंदगी? यह तो जिंदगी का जुल्म है। फीस माफी के कागज लिए हम 7-8 दलित लड़के सरपंच के लिए के यहाँ गए। उसने सबकी अर्जियां ली, सब पर हस्ताक्षर कर स्टैंप लगवा दिए, पर मेरी अर्जी उसने अलग रख दी। मेरी अर्जी पर वह हस्ताक्षर नहीं कर रहा था। मैं लाल पीला हुआ, आवेश में कुछ लगा। इतने में मुल्ला गुरुजी आए, उन दोनों की बातचीत हुई। मुल्ला गुरुजी मेरी ओर से ही बोल रहे थे। सरपंच हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सरपंच की उत्सुकता थी मसाई का पति कौन है, इस बच्चे का बाप कौन है। मसाई हणमंता को मैं पहचानता ही नहीं, तो फिर हस्ताक्षर क्यों करूं? अगर ऐसी ही बात है तो अभी भावक के रूप में संता माई बाल शंकर लिख देंगे, तब तो चलेगा। पर सरपंच को यह भी मान्य नहीं था, क्योंकि संता माई महमूद नामक मुसलमान के साथ रहती है। बड़ी मुश्किल है, सरपंच कह रहा था, मैं इसे पहचानता नहीं। मैं मनुष्य था, सिवा मनुष्य शरीर के मेरे पास था ही क्या? यहाँ इस देश में मनुष्य जाति बिरादरी और धर्म से पहचाना जाता है, बाप से पहचाना जाता है। मेरे पास बाप का नाम नहीं, धर्म और जाति नहीं है, न मैं किसी बाप का उत्तराधिकारी हूँ। मुल्ला गुरुजी ने बहुत समझाया, इसलिए सरपंच ने हस्ताक्षर किए। मैं चिढ़ गया था। क्या प्रत्येक व्यक्ति इस बात की गारंटी दे सकता है कि वह अपने ही कथित बाप का बेटा है? किसने देखा है अपनी बीज धारणा को? किसने देखा है अपने जन्म के पूर्व ही माँ के संभोग को? मैं घर आया। मसा माँ दरवाजे में ही बैठी हुई थी। उन्हें देख मैं रोने लगा। वह अपमान मेरे लिए असह्य था। माँ ने मुझे चूम लिया। दो उल्काएं एक दूसरे की बाहों में गिर गई। दूसरे दिन शुल्क पढ़ाई का प्रार्थना पत्र लेते हुए कक्षा अध्यापक ने पूछा, तेरे पिता नहीं है क्या? मर गए हैं? तेरी माँ नहीं है क्या? मर गई है? मेरे गांव के लड़के मेरी ओर गिद्ध जैसी आंखों से देख रहे थे। बहुत बड़ी आंधी के बाद की शमशान सी शांति कक्षा में फैल चुकी थी। अपनी भीतरी आंधी में मैं खो गया, डोर टूटी पतंग की तरह। माँ से पूछ रहा था, बाप के नाम के स्थान पर क्या लिखूं? मेरे पिता कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मेरे पास क्यों नहीं आते? काका मेरे कौन लगते हैं, काका तेरे कौन लगते हैं? नागी निर्मी किनके हैं, मैं उनका कौन हूं? माँ कुंती की तरह खामोश हो जाती। ऐसे समय मुझे कर्ण नजदीक का लगता, भाई लगता। कई बार मैं ही कर्ण हो जाता, नदी के प्रवाह में बहने लग जाता, दूर, काफी दूर, गहरे, बहुत गहरे, अपने ही भीतर। माँ कटुता से कहती, कह दे गुरुजी से, मेरी माँ पटेल की रखेल है। मुझे बेहद खुशी होती। कल मैं गुरुजी से कहूंगा ही। मुझे रखेल शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम था। मुझे वह शब्द पिता की तरह लगा, पर मुझे क्या मालूम था कि इस शब्द के पीछे जहर छिपाया गया है, व्यभिचारी योनि छिपी हुई है। इस योनि के प्रचंड महाद्वार में कौन प्रवेश करेगा? श्रावण महीने में हमारे गांव में महादेव जी का सप्ताह होता। इस सप्ताह के लिए अड़ोस पड़ोस के गांव के शिव भजनी आते। सप्ताह की समाप्ति जिस दिन होती, उस दिन महादेव जी का मंदिर सजाया जाता। बेलपत्र, नारियल की शाखाएं, बंधनवार, मड़वा तथा लाउड स्पीकर के कारण महादेव जी का मंदिर प्रसन्न तथा खूबसूरत दिखता। सप्ताह के दिनों बासल गांव की भजनी मंडली भी आती, उसमें हणमंता भी दिखाई देता। माँ उस दिन मुझे नहलाती, पाउडर लगाती, मैं भी धुले कपड़े पहनता, भजन मंडली के नजदीक घूमता। इन 7-8 लोगों में किसी से फिर से सुनेंगे, इन 7-8 लोगों में कोई तो तेरा मेरा बाप है, पर मैं उसे कैसे पहचान सकता हूँ? पिता भी मुझे कैसे पहचान सकेंगे? प्रतिवर्ष हणमंता भजनी मंडली के साथ हनूर आता। जिंदगी में पहली बार पिता को नजदीक से देखने का मौका मिला। पर उस रात्रि को मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। एक बार काका ने हनुमंता को हमारे घर खाने के लिए बुलाया। काका हन्नूर के पटेल और हनुमंता बासल गांव का पटेल। सारा गांव नींद में सोया हुआ था। काका और हनुमंता पिए हुए थे। उसी स्थिति में घर आए। मैं सो गया था। मुझे जगाया गया। हनुमंता के जांघ पर बैठाया गया। हनुमंता के मुंह से दुर्गंध निकल रही थी। मैंने अपने इस पिता की ओर भरी आंख से देखा। माँ ने खाना परोसा। काका हनुमंता खाने लगे। हनुमंता बीच बीच में मुझे भी भर रहा था। उनींदी आंखों के बावजूद मैं खाना भी खा रहा था। कई दिनों बाद पिता प्राप्ति के आनंद मुझे मिल रहा था। अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। पिता आ चुका है। कल मैं अपने दोस्तों को अपना पिता दिखाऊंगा। अचानक काका और माँ में विवाद शुरू हुआ। विवाद झगड़े में बदल गया। माँ काका से गाली गलौज करने लगी। घर के बाहर निकाल रही थी। हाथ में चप्पल ले रही थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। माँ पर गुस्सा आ रहा था। इतने दिनों बाद मेरा पिता आया है और माँ उसके साथ झगड़ क्यों रही है? माँ भड़क उठी थी। आखिर में उन्होंने उन दोनों को घर से निकाल बाहर किया और दरवाजा लगा लिया। माँ ने मुझे अपने निकट लिया। उनके रुदन को मैं ज्वालामुखी के स्फोट की तरह महसूस कर रहा था। उनके आंसू प्रलय के मसीहा लग रहे थे। थोड़ी देर बाद काका और हनुमंता वापस आए। उन्होंने दरवाजे पर धक्के लगाने शुरू किए, पर माँ ने दरवाजा नहीं खोला। तुम लोग जाओगी या मैं खुद को जला लूं? माँ चिढ़कर बोल रही थी। मैं कसमसा गया। काका माँ से कह रहे थे, आज रात वह हनुमंता के सेज सजाए। श्रावण के महीने में ही विट्ठल और तथा महादेव के मंदिर में रोज पोथी पढ़ी जाती थी। सारा गांव पोथी सुनने इकट्ठा होता। मेरे मन में क्या आएगा पता नहीं चलता था। उस दिन मैं, मलक्या तथा चंदिया नीचे विट्ठल मंदिर में घुस गए। हमने भगवान के पैर छुए, घर आए। चंदिया का पिता मंदिर की सीढ़ी के पास पोथी सुना रहा था। उसे हमारा मंदिर प्रवेश भाया नहीं। चंदिया को उसने पीटा। हमारी ओर इशारा करके कहने लगा, इनके साथ मत खेलो। मुझे इस गांव में रहना है। तुझे यह क्या सूझी है? मेरा मुंह काला करेगा क्या? आज तक मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। पैर काटूंगा तेरे, चंदिया का बाप चिल्ला रहा था। मतलब हमारा मंदिर प्रवेश अपराध था। हमें अपनी मर्याद से जीना चाहिए। यहाँ अछूतों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। ईश्वर मनुष्य मनुष्य में भेद करता है। एक को अमीर, दूसरे को गरीब। एक को सवर्ण, दूसरे को अछूत। मनुष्य मनुष्य में द्वेष फैलाने वाला यह कैसा ईश्वर है? सभी ईश्वर के पुत्र हैं ना, फिर हम अस्पृश्य कैसे? हमें गांव के बाहर खदेड़ने वाला ईश्वर, धर्म या देश हमें मान्य नहीं है। क्यों रखा गया हमें गांव के बाहर? क्यों रखा गया हमें मनुष्यों से दूर? क्यों रखा गया हमें हमारे ही लोगों से बाहर? मनुष्य मनुष्य में अंतर क्यों? सभी का खून लाल ही है ना। मैं मच्छिंद्र अण्णा से बहुत डरता था। वह मुझ पर हमेशा रोब झाड़ता। मैं डर के मारे उसका काम करता। एक बार उसने मुझे बीड़ियां लाने के लिए कहा। मैंने इनकार कर दिया। वह भड़क गया। चूतिए, कहकर उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। जहां मैं बैठा था वहां से उसने मुझे उठाया। कहने लगा, यह चौपाल तेरे बाप की नहीं है। फिर किसी दिन यहां बैठा तो याद रख, गर्दन काट दूंगा। तेरा बाप बासल गांव में है। यहां क्या है तेरा? इस घटना के बाद कई दिनों तक मैं चौपाल की ओर नहीं गया था। डर लगता था। सोचता, वहां जाऊं तो पिटाई अवश्य होगी, गालियां दी जाएंगी। मैं पराया हूं। यहां किसी भी वस्तु पर मेरा अधिकार नहीं है। मेरे पिता दलित नहीं है। इस दलित बस्ती में घूमते हुए मुझे अक्कर माशी को गुमान नहीं करना चाहिए। गर्दन झुकाकर ही चलना चाहिए। सवर्णों के साथ खेलते समय दलित कहकर मेरी उपेक्षा होती और दलितों में अक्कर्माशी कहकर। अगर मैं कभी बासल गांव जाऊं तो क्या पिता मुझे अपने घर में लेंगे? क्या उनकी पत्नी मुझे रोटी देगी? मेरे पिता में रहते हैं, मेरे पिता कोठी में रहते हैं, माँ झोपड़ी में, मैं सड़कों पर। अंत में मैं मरूंगा कहाँ, जीऊंगा कहाँ? मेरी जड़ें कहाँ हैं? उस दिन सुन्नी जलावन लाने गई थी। कांटों के पौधों में घुसकर जलावन इकट्ठा करना पड़ता था। बिच्छू सांप का डर होता हमेशा, पर रोज इस मृत्यु का भय कहाँ करते बैठेंगे? भयभीत होकर, निष्क्रिय होकर बैठेंगे तो खाएंगे क्या? उस दिन सुन्नी के हाथों में जंगली खजूर के पेड़ का कांटा घुस गया, छेद हो गया। सुन्नी मछली की तरह तड़प रही थी। चार पांच छोटी बच्चियां नजदीक बैठी थी। लकड़हारों और मजदूरनियों ने कांटा निकाल बाहर किया। मैं तो जोर जोर से रोने लगा। सुनी भी रो रही थी। हम दोनों को देख वनी भी रोने लगी। सुनी का तड़पना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। औरतें हमें चुप करा रही थी। घर जाने पर माँ ने कहा, दोनों के बाप अलग अलग हों तो क्या हुआ, दोनों एक ही खून पर पले हुए हो ना। मेरा बाप और सभी बहनों का बाप भिन्न है। यह मालूम होते हुए बहनों के प्रति मेरे मन में आत्मीयता की कभी कमी नहीं आई। मैं बहनों के जू मारता, उनके बालों को संवारता, वीणी डालता। खेल में अलबत्ता हमसे झगड़ा हो जाता, तब नागी चिढ़ जाती, गालियां देती, कहती, तेरा कोई संबंध नहीं है हमसे। पता नहीं कहाँ के हो, किनसे हो, तुम हमारे बाप से नहीं हो। यह सुनकर मैं भीतर से कहीं टूटता, बिखर जाता। नागी के शब्द कलेजे को भेद जाते। मैं खुद को पराया महसूस करता। दादा मुझ पर कभी कभार गुस्सा करते तो मैं चिढ़ता, उन्हें अपमानित करता। तू मुसलमान है, मेरा बाप नहीं है, मुझे तू मार नहीं सकता। ऊपर उठा दादा का हाथ नीचे जाता। मैं कैक्टस की तरह फूलता, दादा पर भी चिढ़ता। काका मुझे पीटते तब मैं उन्हें गालियां देता, पटेल मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। नफरत होती, कभी कोई पीटे तो मैं घर से भाग जाता। ऐसे समय मुझे बासल गांव की याद आती। बासल गांव मेरे बाप का गांव, मेरी पितृभूमि। कैसा होगा वह गांव, कैसे होंगे वहां के लोग, मेरे रिश्तेदार कैसे होंगे, मेरा घर कैसा होगा, मेरी खेती कैसी होगी, मेरे भाई कैसे होंगे? क्या मैं खोजते हुए निकलूं अपनी जड़ों को? कितने दिन लगेंगे वहां पहुंचने में? पहचान पाएंगे मुझे मेरे पिता? बासल गांव के प्रति मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा होती। कभी कभार उस ओर निकलता भी, पर डर लगता। यह सोच करके अगर वहां पहुंचता तो शायद मेरा खून कर देंगे, मैं वापस लौटता। गौरैया का नन्हा सा बच्चा जब पहली बार घोंसले के बाहर निकल आता है, तब उसे अगर आदमी का स्पर्श हो जाए तो गौरैया उसे अपने घोंसले में प्रवेश नहीं देती। उसके सिर पर चोंच मारती है, उसकी बुरी हालत हो जाती है। मैं वहां गया तो मेरी भी स्थिति वैसी ही हो जाएगी, दुर्गति कर दी जाएगी। परिणामतः मुझे वहां से लौटना पड़ेगा। मैं दलित स्त्री के गर्भ से आया, कैसे लेंगे वे मुझे अपने घर में? यहां लौट आऊंगा तो काका, माँ, दादा गौरैया की तरह व्यवहार करेंगे। काका दादा से कहेंगे, शरण्या को क्यों पाल पोस रहे हो, किसका है ये, निकाल दो इसे यहां से। और दादा भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहेंगे, संता के कारण इसे पालना पोसना पड़ता है। घोंसला छूट जाने के बाद पक्षी जैसे शोरगुल मचाते हैं, उसी तरह मैं भी व्याकुल हो जाऊंगा। किनके पास जाकर मैं अपनी दुख व्यक्त करूं, कौन मुझे अपनाएगा? माँ नकार रही है, पिता नकार रहे हैं। क्यों नहीं माँ ने उस बीच का गर्भपात करा दिया?
क्यों नहीं मार दिया मुझे तुरंत जन्म के बाद, क्यों जिलाया मुझे इस दुनिया में। जाति बिरादरी के परे जाकर जन्म ले चुकी मेरी पीढ़ी को अपमानित क्यों किया जा रहा है। कौन सा अपराध किया है हमने, मुझ जैसों ने, माँ पिता की सजा हमें क्यों दी जा रही है। और जब माँ की ओर देखता हूं गुस्सा और भी बढ़ता है। क्यों किया था इसने उस वक्त व्यभिचार, इस व्यभिचारी स्त्री के बिस्तर के पास मुझे जाना चाहिए। पर माँ या संता माँ की ओर देखता हूं तो छटपटाता हूं। मसा माँ अकेली नहीं है, संता माँ अकेली नहीं है, उन्होंने खुद को बेचा है किसी और की खुशी के लिए। रोटी के लिए मजबूर होकर उन्होंने खुद को बेचा नहीं था, रोटी के लिए थोड़े ही कोई जीता है। रोटी के पीछे भी एक विराट दुनिया होती है, रोटी के पीछे एक जीवन होता है, रोटी के बाहर की बस्ती के जीवन में वह जीवन कभी नहीं आया। रोटी भी सवर्णों के हाथों में थी और इस बस्ती की इज्जत भी। एक हाथ से उन्होंने इस बस्ती की भूख को मिटाया तो दूसरे हाथ से इनको भोगा। सवर्णों के दो हाथों के बीच कसमसाती मसा माँ को मैं देख नहीं पाता। सीता को अशोक वन से छुड़ाया गया, पर मेरी माँ का छुटकारा कौन करेगा। पटेल की रखैल कहलाते कहलाते वह पटेल के खेत में क्षण भर रीतते हुए मर जाएगी। पर हम बच्चों को, बच्चों का क्या होगा। नागी, निर्मी, वनी, सुनी, पमी, इनके साथ शादी कौन करेगा। मैं तो पुरुष हूं, किसी रखैल के साथ जी लूंगा, पर इन बहनों का क्या होगा। क्या इनके विवाह होंगे। मनुष्यों की बस्ती में हमें स्वीकार किया जाएगा। हमारी मौत पर क्या दलित बस्ती इकट्ठी होगी। क्या बहनें ऐसे ही सड़ जाएंगी। कहा जाता है स्त्री पति को लेकर तथा हर पुरुष पत्नी को लेकर ही जन्म लेते हैं। फिर कहाँ हैं इनके पति। ये भी ऐसी ही बलि दे जाएंगी माँ की तरह। भाई बहन का नाता न होता तो मैं ही इनमें से किसी एक के साथ विवाह कर उसे सुखी रखता, सुखी करता। माँ का स्नेह मुझे नहीं मिल पाया। मेरी वह पूर्ण माँ है ही नहीं, वह आधी माँ है तथा आधी पटेल की बाई है। पटेल की मर्जी उसे संभालनी पड़ती है। उसका वात्सल्य मेरे लिए घुमड़ घुमड़ कर आता है, पर उसके हाथ पटेल के हाथों में गुथे रहते हैं। मेरी माँ मुझसे छिन गई। इस पूरे चक्र से गुजरते हुए वह जब कभी मेरे सिर या पीठ पर हाथ फेरती तो वह स्पर्श मुझे जीवन दायिनी लगता। मेरी माँ को मुझसे किसने छीना। उसका वात्सल्य मेरे लिए बांझ क्यों बन गया है।